ओम शांति। हम सबके सामने आज उपस्थित है बाप दादा के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, लवफुल एंड लॉफुल, सर्विसेबल एंड सक्सेसफुल, और साथ साथ भाई जी की विशेष अचीवमेंट साधनाएं जो है वो हिमालय से उन्नत और सागर से गहरा है, ऐसे विशेष विशेषता भरी हुई भाई साहेब डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की हम सब करतारण से स्वागत करेंगे। भाई जी की विशेष परिचय मैं संक्षिप्त में सुनाती हूँ। एट प्रेजेंट सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट अबू एंड इट्स ब्रांचेस, भाई जी विशेष इसमें सेवा दे रहे हैं। और भाई जी को अनेक अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं और अनेक अनेक उन्नत पद और उन्नत विद्या डिग्री भी प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ मैं सुना रही हूँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन कार्डियोलॉजी इन द वर्ल्ड प्रेजेंटेड बाई श्रीमती शीला दीक्षित ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, awarded by Her Excellency President of India Shrimati Pratibha Patil for excellence in cardiology on 22 September 2008 Rashtrapati Bhavan, lifetime achievement award for outstanding contribution in the field of preventive cardiology presented by His Excellency President of India Dr. APJ Abdul Kalam in 2006 at Rashtrapati Bhavan, International Award for Excelling in Medicine for the 21st Century awarded by United Nations of Organization, 2000 Millennium Medal of Honor from USA in Holistic Health Care, 20th Century Award of Achievement Medal of Honor Cambridge University England in Mind, Body and Medicine। इस प्रकार भाई जी हम सबको तन मन से अभी रिफ्रेश करने वाले हैं और जीवन में विशेष हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन की लाइट और माइट अपने बोल द्वारा वाइब्रेशन द्वारा हम सबको अभी दे रहे हैं। भाई जी अपनी प्रवचन अभी हम सबको देंगे। भाई जी को फिर से स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। अब वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है? हम सभी को ऐसा लग रहा है, विश्व में हर आत्मा को ही ऐसा लग रहा है कि अब अंतिम घड़ियां हैं, महापरिवर्तन की अंतिम घड़ियां हैं। और इसमें तीन चीजों का या तीन इसमें तीन पात्र हैं। एक है हम ब्राह्मण आत्माएं, हम आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त और उदाहरण मुहूर्त। हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनको बाबा ने चुना है, हम आत्माएं इस सारे विश्व के आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त और उदाहरण मुहूर्त आत्माएं। और दूसरा है विनाश के निमित्त कुछ आत्माएं, जिसमें कुछ ऐसे देश हैं यूरोप के, अमेरिका के देश हैं, कुछ मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो भी देश हैं जिनके पास साइंस के साधन हैं, उनके पास ऐसे साइंस के साधन जिसके द्वारा कुछ ही समय में सारे विश्व का विनाश कर सकते हैं। और तीसरा है प्रकृति के पांचों तत्व। इन तीनों का आपस में बहुत ही गुह्य कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। जो विनाश के निमित्त आत्माएं हैं वो एटॉमिक वेपन्स जो हैं, एटॉमिक वार के वेपन्स हैं जो कुछ ही समय में सारे विश्व का विनाश कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इतने एटॉमिक वेपन्स हैं कि सारी पृथ्वी को 20 बार खत्म कर सकते हैं। तो वो जो विनाश के साथ साधन हैं वो उसका बटन दबाने के लिए उनको चाहिए एक एनर्जी चाहिए, नहीं तो अभी तक वो हिल रहे हैं। वो उनको बटन दबाने के लिए हमारी अचल अडोल एक स्थिति चाहिए। हम संपन्न और संपूर्ण बन जाए तो वो विनाश का बटन दबाएं। ऐसा कहा जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है और प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, अंत में जब होगा तो उस समय ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा, जो आइस कैप्स हैं, नॉर्थ कैप और साउथ कैप, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इस पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी हुई है। और ये जैसे ही बर्फ पिघलेगी वैसे ही साउथ पोल नॉर्थ पोल चेंज हो जाएंगे, धरती जो टेढ़ी हो रखी है वो सीधी हो जाएगी और सुनामी आएंगी बड़ी जबरदस्त, पूरा धरती पे सारा पानी जैसे समुद्र सारी धरती को हप कर लेगा। पर वो कब होगा? ऐसा कहा जाता है अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती गई तो लगभग 50 साल और लगेंगे वो इफेक्ट आने में। किंतु अगर एटॉमिक वार हो जाए तो जो 50 साल वाली ग्लोबल वार्मिंग होगी वो कुछ ही दिनों में हो जाएगी, क्योंकि जब एटम बम फटता है, हाइड्रोजन बम फटता है, तो लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत विनाश होता है, और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा बहुत तेजी से होगा, और उससे वो सारा जो आइस कैप्स पिघल जाएंगे और एकदम से पोल शिफ्ट होंगे, बड़ी भयानक सुनामी जिसमें प्रकृति के पांचों तत्व भूमि जल वायु अग्नि और आकाश, पांचों तत्व एक साथ हलचल करेंगे और जिससे महापरिवर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा एरिया भारत का बचेगा बस, जहां भविष्य सत्युग की स्थापना होगी, श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो इस परिवर्तन के समय मुख्य जो पार्ट है वो हम आत्माओं का है। हम जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, उदाहरण मूर्त आत्माएं हैं, हमारा ऐसा क्या पुरुषार्थ हो, ऐसी पुरुषार्थ हमारा हो जाए जो बाबा जो हमको चाहते हैं, कि मनुष्य से ब्राह्मण तो बन गए कि तो ब्राह्मण से फरिश्ता, क्योंकि हमारा अंतिम स्थिति क्या है, ब्राह्मण जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण शब्द में ही छुपा हुआ है अर्थ इसका। ब्राह्मण शब्द है ना ब्राह्मण, जैसे ब्रह्मा शब्द है ना ब्राह्मण, बेहद ब्रह्मा बेहद की मां, ऐसे ब्राह्मण शब्द में 3 शब्द छुपे हुए हैं, बुद्धि मन और संस्कार। पहला जो ब्रह्म है ना ब्रह्म मीन्स बेहद की बुद्धि, दूसरा है मन, मां मन ब्राह्मण है ना मन, और तीसरा ना विष्णु वाला ना है ना वो संस्कार है। तो हम बेहद की बुद्धि से ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि हद में नहीं है, जिनकी बुद्धि बेहद में है, बेहद की बुद्धि से मां मन मनमना भव, मन को मनमना भव कर मध्याजी भव है ना, मनमना भव से मध्याजी अर्थात फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता सो देवता, और ना जो लास्ट में ना संस्कार, विष्णु के समान हमारा संस्कार बन जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधार। तो जब ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं तो ब्राह्मण शब्द में ही छुपा हुआ है कि बेहद की बुद्धि से, ब्राह्मण वो है जो अपनी बेहद की बुद्धि से अपने मन को मनमना भव करके मध्याजी भव अर्थात फरिश्ता सो देवता स्थिति अर्थात विष्णु के समान अपने संस्कार बनाने वाले, विष्णु अर्थात जिसमें विष का एक अणु भी ना हो, विष का अंश भी ना हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। तो आज हम देखेंगे कि हमारा ऐसा कैसा पुरुषार्थ हो जिससे कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और इसमें हमारी क्या क्या खामी हो जाती है, कई बार हम चाहते नहीं है किंतु हमारा जो द्वापर से संस्कार रहा है ना, मध्य से जो संस्कार आए, विकारों का संस्कार, विकार जो आए स्वभाव के रूप में आए और उन 5 विकारों के वश होकर में कार्य किया, तो हमारे कुछ आसुरी संस्कार बन गए जिनके वश होकर के आज भी बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारी जो दिशा और दशा और स्थिति, वो तीनों जैसे बननी चाहिए वैसे नहीं बन पाती है। तो हम आज हम इस पे समझेंगे कि कैसे हमारा इस समय पुरुषार्थ होना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सके। पहली बात तो हम समझ लेते हैं पुरुषार्थ शब्द क्या है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों से बना है, पुरुष प्लस रथ। पुरुषार्थ, पुरुष प्लस रथ। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को कहा जाता है पुरुष। आत्मा रथ, अर्थात आत्मा इस रथ में, इस देह में रहते हुए अपने आत्मिक स्थिति को प्राप्त करे, अंतिम आत्मिक स्थिति, संपूर्ण संपन्न और संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त करे। तो ये आत्मिक स्थिति क्या, किस तरह से हमें किस किस स्टेजेस में जाना है? पहली स्थिति आत्मिक स्थिति की है जो हमें अभ्यास करना है, श्वासों श्वास चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो हमारा अभ्यास निरंतर का होना चाहिए आत्मिक स्थिति का, वो है देही मानसिक स्थिति। अर्थात देह में रहते हुए, इस देह में रहते हुए, पुरुषार्थ का अर्थ है इस देह में रहते हुए अपने सत्य में स्थित होकर के, जो बाबा ने हमें सत्य की समझ दी अर्थात ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का श्वासों श्वास हम मनन चिंतन मंथन स्मरण करते रहे, इसी को हम देही मानसिक स्थिति कहते हैं। हर कर्म करते मैं आत्मा, मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्म ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, अर्थात सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद, ऐसी सार जिसमें सर्व संबंध समाये हैं। बाबा ही मेरा संसार है, मेरे हर संकल्प में बाबा, हर बोल में बाबा, हर कर्म में बाबा, संबंध संपर्क में बाबा, और मेरे स्वप्न में भी बाबा ही हूं। ऐसी स्थिति में रहने वाले, ऐसी देही मानसिक स्थिति का निरंतर अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे अंदर से आत्मा का ये अभ्यास करते करते मनन चिंतन किसका करना है? जो ये बाबा की मुरली है ना, जैसे आज की मुरली हमने सुनी, कल की आत्मा की, कल की मुरली सुनी हमने स्मृति और विस्मृति, घाटा और फायदा, आज की मुरली सुनी हमने रूहानी हुनर, हम जो वरदान सुनते हैं, स्लोगन सुनते हैं, इनका बहुत गहराई से मनन अर्थात दिल ही दिल में, मन ही मन में रिवाइज करना, मन माना मन ही मन में रिवाइज करना, चिंतन माना गहराई में जाना, या यूं कहें के रिवाइज और रियलाइज करना, मन ही मन में रिवाइज करते जाओ और रियलाइज माना सच्ची दिल से उसको महसूस करते जाओ। एक मुरली बाबा ने कहा था बिना सच्ची दिल की महसूसता के क्या नहीं होती, अनुभूति नहीं होती। सपोज आप खाना खा रहे हैं, आपने कोई ब्रह्मा भोजन है उसमें कई सारी चीजें हैं और आपका मन कहीं और है, दिल कहीं और है और आप खा रहे हैं, टेंशन है कोई दिमाग में, खा रहे हैं, आपने खाया, समोसा भी खाया, पकोड़ा भी खाया, गुलाब जामुन भी खाया, कि तो मन में टेंशन है ना, तो आपको स्वाद का पता लगता है क्या? खा तो रहे हैं कि तो अंदर चिंता लगी हुई है, स्वाद का पता लगता है? क्या खाया, कितना खाया पता ही नहीं लगता है। और अगर आप महसूस करके खाओ, सच्चे दिल से लगन से खाओ, ब्रह्मा भोजन है, एक ही चीज को बहुत प्यार से उसका रस लेते हुए खाओ, तो अनुभव होता है हमने वो चीज खाई थी। अगर हमें दिल में उसको महसूस ही नहीं किया तो हमें कुछ पूछेंगे ना, कैसा था, कैसी चीज बनी थी वो, पता नहीं, सब्जी ठीक थी, क्या सब्जी थी, सब्जी भी क्या थी पता ही नहीं लगेगा, याद ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिल और मन तो कहीं और था, खाना तो हम खा रहे थे। तो बिना सच्ची दिल के महसूसता के अनुभूति नहीं होती है और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, मतलब सैचुरेशन संपूर्ण नहीं होता, संपन्न नहीं होते हैं। और बिना तृप्ति के, बिना सैचुरेशन के पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे तो पुराने स्वभाव संस्कार आ गए हैं द्वापर युग से, और कलयुग में आके तमो प्रधान अवस्था में आ गए, बहुत दृढ़ हो गए, बहुत कड़े हो संस्कार हो गए। संस्कार ही जीवन है। हम चाहते नहीं है बहुत सारी बातें करना, क्योंकि तो समय पर वो संस्कार, जैसे आपका सपोज आप हो गया सुबह सुबह 5 बजे चाय पीने की संस्कार पड़ा हुआ है, और आप रात को दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो जब 5 बजेंगे ना जब आपको, तो अपने आप ही वो संस्कार क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपसे चाय बनवा के पी जाएंगे चाय। नहीं होता है, जो चीज की आदत पड़ जाती है ना वो आदत हमसे गलत काम करा लेती है। अभी हम ब्राह्मणों को क्या करना है, अभी जो बाबा की श्रीमत पर हमें नए संस्कार डालने हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने हमें नई श्रीमत दी है, नया समझ दी है, सत्य की समझ दी है, नया जीवन जीने की हमको समझ दी है, उस पर चलते हुए दृढ़ता के साथ इस नए रास्ते पर वो संस्कार बन जाए, वो आदत बन जाए हमारी, चाहे वो अमृत वेला उठने की आदत है, पावरफुल मेडिटेशन करने की है, चाहे मुरली में जाने के आने की आदत है, कि सारा दिन हर कार्य करते बाबा की मुरली का बार बार मनन चिंतन मंथन सिमरण करने की आदत है, रिवाइज रियलाइजेशन करने की आदत है ना, चाहे हर घंटे बाबा को 1 मिनट बाबा को ट्रैफिक कंट्रोल करने की आदत है, बीच में ट्रैफिक का 3 मिनट का वो करने की आदत बन जाए, वॉकिंग करते हैं सुबह बाबा की याद में सैर करना, रिवाइज रियलाइज करते हुए सैर करना, शाम को आधा घंटा 1 घंटा बाबा की याद में बैठना नुमा शाम के समय, सोने के पहले लेटर लिखना बाबा को, चार्ट भरना, सच्चाई से बाबा का अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना, चार्ट भरना याद का, घंटे घंटे याद का चार्ट भरना, सच्चा सच्चा समाचार, दिन में अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, पूरा का पूरा समाचार, दिल को बुद्धि को खाली करके मन को खाली करके फिर सच्चा सच्चा चार्ट भरना, फिर मुरली पढ़ के बाबा की, बाबा से कम 5 मिनट तो बाबा से पावरफुल याद करके सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में सो जाना। क्योंकि ये जो हमारा बेड होता है ना, बेड तो गैरेज है जिसमें शरीर रूपी कार को हम पार्क करते हैं, सूक्ष्म वतन हमारा बेडरूम है और बाबा की गोद हमारा बेड है, तो कहां सोना चाहिए, गैरेज में, गैरेज में सोना चाहिए, कहां सोना चाहिए, हमें बेडरूम में सोना है और कहां सोना है, बेड पे सोना है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में वही जा सकता है जो अपना पूरा ईमानदारी से सच्चा सच्चा पोता बेल बाबा को दे, सच्चा समाचार समाचार बाबा को दे, और मुरली से अपने मन को एकदम प्लेन कर दे, साफ कर दे, बुद्धि को साफ कर दे। क्योंकि शुद्ध संकल्पों की दुनिया है सूक्ष्म वतन, हम सूक्ष्म वतन जा ही तब सकते हैं जब हमारा शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो, और मुरली से ही शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता है। तो ये देही हमारी, जितना हम इस देही हमारी से चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते जाते, हमारी आत्मानी स्थिति बनती जाती है। आत्मानी स्थिति का अर्थ क्या है, आत्मानी स्थिति का अर्थ है कि आत्मा के 7ों गुण प्रैक्टिकल व्यवहार में दिखाई दे, हमारी ज्ञान स्वरूप स्थिति बन जाए, हमारी पवित्र स्वरूप, पवित्रता कहने के लिए नहीं, पवित्र स्वरूप स्थिति बन जाए, हम शांत स्वरूप स्थिति बन जाए, शांत माना पास्ट का एक भी विचार ना चले, भविष्य की चिंता ना रहे, पास्ट का चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, जो भी हुआ फुल स्टॉप, अभी तक जो हुआ था अभी हो रहा था, एक मिनट पहले कुछ हुआ, किसने कुछ गलत कहा, कोई पुराना संकल्प बुद्धि में आया, एकदम फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करें, 90% थॉट्स कट जाते हैं, 97% थॉट्स कट जाते हैं, सिर्फ 3-4% ही थॉट्स वर्तमान में सत्य संकल्प जो बाबा ने दिए हैं वही चलते हैं, ABCD अंदर चलता है, A4 आत्मा, B4 बाबा, C4 कनेक्शन, D4 ड्रामा, ड्रामा को फुल स्टॉप लगाया, अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड, सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड होके उस पावरफुल स्थिति में हम कर्म करते हैं, इसे शांति कहते हैं। तो शांति का प्रभाव हमारे बुद्धि मन संस्कार में होता रहे, आंखों से होता रहे, कानों से होता रहे, मुख से, रोम रोम से होता रहे, हमारे शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में, एक एक शरीर के एक एक सेल हमारी चलती किससे है, किससे चलती है, इन 7ों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से चलती है। तो हमारे रोम रोम में शांति का प्रभाव होता रहे। योग का अर्थ क्या है और तपस्या का क्या अर्थ है, योग मना ही क्या है, योग मना, योग को क्या, योग मना, योग और मेडिटेशन का मतलब है तो कनेक्शन, कनेक्शन संबंध जोड़ है ना, किससे कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाना। मैं अपने सत्य, सत्य की दो परिभाषाएं हैं, सत्य अर्थात जो एटर्नल है, सत्य अर्थात जो अविनाशी है, जन्म मरण से परे है, शाश्वत है, सदाई है, सत्य दूसरा सत्य अनचेंजेबल अपरिवर्तनशील। तो चार सत्य हैं, पहला है आत्मा, ए आत्मा सत्य है, जन्म मरण से परे है। शरीर जन्म मरण में आता है कि तो आत्मा अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ तीसरा लेती है, हमने 83 शरीर लिए हैं, तो आत्मा सत्य है। दूसरा परम सत्य है, परमात्मा, वो तो जन्म लेता ही नहीं, उसे अवतरण होता है पूरे कल्प में एक बार संगम पर, और अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। उसको हम परम सत्य किस लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति सदा ही भरपूर रहती है, सूर्य के समान। हमारी कला कम ज्यादा होती है, हम 16 से 14 कला, 8 कला, 6 कला, 4 कला, 2 कला बनते हैं, किंतु वो कला, इसलिए हम सत्य हैं, वो परम सत्य है। फिर आत्मा कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, सदा ही है। सत्युग त्रेता में हमारे संस्कारों में शिव बाबा है, किंतु द्वापर कलयुग में हम उसको याद करते हैं और संगम में बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं, सर्व संबंधों से कम बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा में कर्म सत्य है, जो हमने कर्म किया, कर्म का कोई विनाश नहीं होता है, जो भी हमने कर्म कर दिया, कर्म का विनाश नहीं होता है। विक्रम, पाप कर्म का, पाप भस्म होता है, कर्म भस्म नहीं होता है, कर्म सत्य है। तो ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, सत्य, सत्य का मनन चिंतन करना, इस सत्य का, ABCD का, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य, परम सिद्ध, परम चैतन्य, सदा जागती ज्योत, आत्मा की ज्योत सदा जागती ज्योत नहीं है, परमात्मा सदा जागती ज्योत है। तो सदा जागती ज्योत परमात्मा से हमारा कनेक्शन, और परम ज्योति ना, ऐसी ज्योति जो कभी कम ज्यादा नहीं होती है, वो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा को पावर हाउस। और ड्रामा में ये जो कर्म सत्य है, विक्रम का भस्म क्या होता है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 100 साल पहले मेरा कोई दोस्त था पिछले जन्म में, उससे मैं 10 रुपया उधार लेता हूं और किसी कारणवश में उसको वापस नहीं कर पाता हूं। इस जन्म में वो मेरा दोस्त, जो दोस्त था, फ्रेंड था, इस जन्म में मेरा के संबंधी बनता है, माता पिता या भाई बहन या पति पत्नी या बच्चा या बच्ची या बिजनेस पार्टनर आके बनता है, और 10 साल जो 10 रुपए जो मैंने उधार लिया उसको वापस देना पड़ेगा, और साथ साथ 100 साल का ब्याज भी देना पड़ेगा। 100 साल का कितना ब्याज होता है, कितना ब्याज होता है, हमने एक बार हिसाब लगाया था, 100 साल का ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है, वो 4,18,35,040 रुपया होता है। हमारा 100 साल की बात है, हमारा कितने कर, कितना कितने साल का हिसाब किताब है, 2500 साल का हिसाब किताब है। तो जो हम पाप कर्म करते हैं, उस कर्म का हिसाब किताब, उसको ही पाप, वो पाप बन जाता है। मूलधन तो हमें देना ही पड़ता है, ब्याज माफ होता है योग से। किसी के हमने 2 बार इंसल्ट की 100 साल पहले, इस जन्म में वो कम से कम व्यक्ति हमारे 10,000 बार इंसल्ट करेगा ब्याज के साथ। अगर हम अच्छी सही विधि से योग करते हैं, जो बाबा ने बताई विधि है उसके द्वारा योग करते हैं, तो हमारा ये 10,000 जो हमारी इंसल्ट होने वाली थी वो माफ हो जाएगी। इसे कहते हैं पापकर्म भस्म होना। 2 बार तो इंसल्ट होगी, 10 रुपये तो देना पड़ेगा। अगर हमने 50% ही हमने योग लगाया बाबा की विधि के अनुसार, कुछ अपनी मनमत परमत पे लगाया, तो हमारा 50% माफ होगा, फिर 2 करोड़ तो हमको देना ही पड़ेगा, राइट? इसलिए एक्यूरेट विधि होनी बहुत आवश्यक है। तो देहमानी स्थिति से हमारी आत्मानी स्थिति, सत्युग में हमारी आत्मानी स्थिति होती है, सातों गुणों का प्रभाव, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्ति, शक्ति का स्वरूप हम होते हैं, आनंद स्वरूप स्थिति होती है, सुख स्वरूप स्थिति होती है, प्रेम स्वरूप स्थिति होती है, शांत स्वरूप स्थिति होती है। हम अभ्यास नहीं करते सत्युग में, सातों गुणों का प्रभाव सदा हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। ब्राह्मण जीवन की एक विशेषता है, हम कई बार योग तो बहुत अच्छा लगाते हैं, हमारे कई भाई बहन बहुत योग लगाते हैं, चार चार घंटा आठ आठ घंटा भी उनका चार्ट है, बहुत समय योग लगाते हैं, मनसा में बहुत मनसा सेवा भी करते हैं, किंतु जब व्यवहार में आते हैं तो उनका व्यवहार में वही पुराने स्वभाव संस्कार दिखाई देते हैं, क्रोध भी कर लेते हैं, चिंता भी कर लेते हैं, उदास भी हो जाते हैं, मूड भी ऑफ हो जाता है। तो ब्राह्मण जीवन इसको नहीं कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में से हमारा चेहरा और चलन माना कर्म बदलना चाहिए, चेहरा माना हमारा मन बदलना चाहिए, हमारे मन के जो मन है कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे पे हमारे अंदर जो मन में क्या चलता है वो हमारी आंखों से दिखाई देता है, हमारे चेहरे से दिखाई देता है, हमारे एक्सप्रेशन से दिखाई देता है, जो भी कुछ हम सोच रहे होते हैं, जैसे ही हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी भावना होती है, जो हमारी वृत्ति होती है, दृष्टि होती है, जो हमारी स्मृति होती है, वो भी चेहरे से दिखाई देती है। और चलन कर्म, चलन माना कर्म, हमारा देखना, हमारा पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, वैसे पैदल करना, लोगों से व्यवहार करना, वो भी दिखाई देता है। तो जो प्रैक्टिकल में ज्ञान की स्थिति है, इसकी मैं थोड़ा सा थोड़े कुछ शब्दों में इसको मैं आप शेयर करता हूं आपसे। हमारा एक्यूरेट पुरुषार्थ क्या हो, वर्तमान समय हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो जो उड़ती कला वाला हो, जिसे हम तीव्र पुरुषार्थ भी कहते हैं। बाबा ने समय समय तीव्र पुरुषार्थ के लिए कहा है कि तू फिर भी बच्चे कई बार तीव्र पुरुषार्थ की बजाय हम ठहरती कला ठहरते पुरुषार्थ में आ जाते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, सबसे जो पहली बात है हमारी दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए। कहते हैं बुद्धि मन संस्कार ब्राह्मण, पहली बात है बुद्धि, राजयोग बुद्धि योग है। तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, और बुद्धि का भी सबसे सेंट्रल एस्पेक्ट क्या है, दिल है। जैसे आपने देखा ना शूटिंग रेंज में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, बीच में एक बिंदु होता है, बीच में उसके आसपास सर्कल होता है, पहला सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल। तो पहले सर्कल जो होता है उसमें अगर हम शूट करते हैं तो 10 नंबर 10x10 होता है, वो जो अंदर का जो सेंट्रल जो ये दिल नहीं फिजिकली, तो शरीर का दिल है, आत्मा का दिल, कॉन्शियसनेस कॉन्शियंस अंतरात्मा चेतना जिसे कहते हैं, ये आत्मा का दिल जो है, इस दिल में ये दिल सच्ची साफ सच्ची और साफ होनी चाहिए। मनुष्यों के दिल में और ब्राह्मणों के दिल में क्या फर्क है, मनुष्यों के दिल में क्या होता है, मनुष्य की बुद्धि में, दिल में, बुद्धि में, मन में और तन में, रोम रोम में, ये क्या भरा हुआ, देहभान भरा हुआ है, देहाभिमान भरा हुआ है, देहाभिमान के संबंध संपर्क भरे हुए हैं, देहाभिमान के पदार्थ प्रॉपर्टी मकान जायदाद बैंक बैलेंस वो भरा हुआ है, और देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे हुए हैं, और 5 विकारों के वश होकर जो कर्म किए जाते हैं उससे आत्मा के सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं ज्ञान पवित्रता शांति सच्चा प्रेम अतीन्द्रिय सुख आनंद और 8 शक्तियां कम से कम होती जाती हैं, उनका ह्रास होता जाता है, और उससे हमारे अंदर आसुरी संस्कार आसुरी आदतें पैदा होती रहती हैं। सबसे बड़ी जो आसुरी आदत ब्राह्मणों को तंग करती है वह आलस्य है, दूसरा अलबेलापन है, केयरलेसनेस। बाबा ने जो श्रीमत दी है उसमें आलस्य और अलबेलापन, केयरलेस होके हम याद करते हैं, केयरलेस होके हम अमृत वेला करते हैं, केयरलेस होके मुरली को सुनते हैं, अटेंशन नहीं करते हैं पूरी। दूसरा दोष दर्शन, दूसरों के अवगुण देखना शुरू कर देते हैं, दोष दर्शन, हंस की वृत्ति की वजह बगुले की वृत्ति हो जाती है। और ब्राह्मण जो होते हैं वो रहमदिल होते हैं, और इसकी बजाय कोई हमारे साथ गलत कर दे उसको उस प्रति बदला लेने की भावना रख लेना। ब्राह्मणों के नेचर में निश्चय और विश्वास, और जो आसुरी स्वभाव आसुरी संस्कार क्या होता है, हर बात में शक करना, हर बात में अनुमान लगाना। ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो क्या होते हैं, बेफिक्र बादशाह होते हैं, कोई चिंता नहीं होती है, ईश्वरी फकुर में रहते हैं। और जो आसुरी संस्कार है वो है चिंता करना। सच्चे ब्राह्मण निर्भय होते हैं, और आसुरी संस्कार जो हमारे अंदर आ जाता है, अगर हम श्रीमत की बजाय जरा भी मनमत परमत मिक्स कर लेते हैं तो हमारे अंदर डर लगता है, भय पैदा हो जाता है। सच्चे ब्राह्मण क्या होते हैं, सच्चे ब्राह्मण में धीरज होता है, हर बात में धीरज होता है, धीरेता होती है, हर काम बड़ी शांति से करते हैं, प्रेम से करते हैं, खुशी से करते हैं, जरा भी टाइम का प्रेशर नहीं, काम का प्रेशर नहीं, परफेक्शन का प्रेशर नहीं, इजी होके, कोई कंपटीशन कंपैरिजन नहीं। सच्चे ब्राह्मण कभी कंपटीशन कंपैरिजन नहीं करते हैं, उसका बस बाबा से लगन है, सबका सबके लिए पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप, पुरुषार्थ में पहले मैं, प्राप्ति में सब पहले आप, सब पहले आप चलो। और सच्चा ब्राह्मण कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, किंतु अगर जरा भी मनमत परमत है तो ईर्ष्या द्वेष ये संस्कार पैदा हो जाए, आदत बन जाती। तो सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या है, सच्चे और सच्ची दिल का मतलब क्या है? सच्ची दिल माना जिसमें जिसमें जरा भी देहभान ना हो, जिसमें जरा भी देहभिमान ना हो, मैं बड़ा हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसके निमित्त हूं, ये भान नहीं होना चाहिए जरा भी। बस दिल में, अब बाबा मेरे दिल में बाबा कब आएगा? अगर जरा भी देहभान है, जरा भी देहभिमान है, जरा भी देहभिमान के संबंध संपर्क मेरे दिल में है, चेतना में उनकी याद आती है, कोई देहभिमान का पदार्थ है, कोई प्रॉपर्टी में बुद्धि रहती है, चीजों में बुद्धि रहती है, मुझे वहां जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना है, इच्छा रहती है ना, तो देव ये जो देवमान के पदार्थ, फिर देवमान से पांच विकार, काम क्रोध लोमो अहंकार, या जो आसुरी संस्कार दस हैं, आलस्य है, अलबेलापन है, दोष दर्शन है, बदलने की भावना है, शक अनुमान है, चिंता भय है, जल्दीबाजी जरा सी भी, ईर्ष्या द्वेष है, कंपटीशन कंपैरिजन की भावना है, तो मेरे दिल सच्ची साफ नहीं है, इनको दिल से निकालना है। सच्ची दिल में जिस दिल में बाबा के सिवा कुछ और ना हो, जिस दिल में एबीसीडी के अलावा कुछ और ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, परमात्मा परम सत्य है मेरे दिल में, परम सत्य बाबा, बाबा का निवास स्थान, दिल एक मंदिर है ना कहते हैं ना, उस दिल में मैं इतने दिल को स्वच्छ बना दूं, बाबा उस दिल में आके रहे। अगर मैं, मेरे दिल में बाबा है तो मैं बाबा के दिल तक नशीन बन सकता हूं, क्योंकि दिल तक नशीन ही भविष्य में राज्य तक नशीन बन सकता है। अकाल तक नशीन बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आत्मा के पास सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हों, और बाबा सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है, पावर हाउस है, उसको दिल में बिठा लें, तो ये सच्ची दिल है। और साफ दिल माना जिस दिल में श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत ना हो, अनमनमत परमत का अंश भी ना हो, तो सही पुरुषार्थ माना ये है, सच्चा पुरुषार्थ इस समय जो पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि याद उसकी आती है जो दिल में होता है, याद उसकी आती है जो जिसमें दिल सर्व संबंध जिससे होते हैं, संबंधी लौकिक संबंधी दिल में बैठा तो उनकी ऑटोमेटिक याद आती है, मुझे किसी संबंधी संपर्क वाले की याद आती है, इसका मैं दिल में, वो मेरे दिल में बैठा हुआ है, जो दिल में होता है उसकी याद सताती है, तड़फने वाली याद होती है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। इसलिए कई बार ब्राह्मणों कहते हैं मुझे, मैं याद करना योग मुश्किल लगता है, योग होता ही नहीं है, बैठते हैं बाबा को याद करने, याद कुछ और आ जाता है, संबंधी याद आता है, कोई काम याद आता है, कोई घर याद आता है, कोई प्रॉपर्टी याद आती है, शेयर मार्केट याद आती है, किसी ने मुझे ये कहा था, वो दुनियावी बात याद आती है। इसका अर्थ क्या है? दिल मेरी सच्ची नहीं है। और साफ माना श्रीमत के बजाय मनमत, उसने उस भाई ने ये कहा था, उस बहन ने ये कहा था, मनमत परमत याद आना। तो शिव बाबा दिल में है और बाबा की श्रीमत माना मुरली, ये जो बाबा की मुरली है ना, तो मुरलीधर और मुरली ये मेरे दिल में है, तो मेरे दिल सच्ची और साफ है। अगर दिल सच्ची और साफ है तो फिर हम बाबा के साथ सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद को अनुभव कर सकते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है ना, उस ज्ञान के सागर को अंदर महसूस करें, रिवाइज करें, सच्ची दिल से उसको महसूस करें, कैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान क्या है, सत्य की समझ, एबीसीडी को अंदर अंदर रिवाइज करें, मनन करें, मन ही मन में, मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु, महसूस करें इसको अंदर से, चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा भोजन ग्रहण कर रही हूं, मैं आत्मा पानी पी रही हूं, हर समय इस वक्त को महसूस करें। मैं आत्मा हार्ट से खून पंप कर रही हूं, मैं आत्मा सांस ले रही हूं, मैं आत्मा पैरों से चलती हूं। और ये बहुत जरूरी है कि आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए परमात्मा की याद होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइन हो तो करंट तो आत्मिक स्थिति में टिक सकता हूं। जैसे एक सेठ का बच्चा होता है, बच्चा मां बाप से बिछुड़ जाता है, उसका बाप बहुत बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, मल्टी मिलियनेयर है, किंतु वो बच्चा मां बाप से बिछुड़ जाता है तो क्या होता है, वो भीख मांगता है, जेब काटता है। कोई उसको कहे तू तो सेठ का बच्चा है, तू अपने को ऐसा क्यों करता है, तो अपने को सेठ का बच्चा समझ नहीं सकता जब तक सेठ की गोदी में ना चला जाए, सेठ उसको अडॉप्ट ना कर ले और वो पहचान ले कि सच में ये मेरा बाप है। तो बिना सेठ की गोदी में जाए अपने को सेठ नहीं कह सकते, मास्टर सेठ नहीं कह सकते। तो आत्मिक स्थिति में टिकना सहज नहीं है, यही पुरुषार्थ है। मैं आत्मा इस देह का मालिक हूं। ओम का अर्थ भी क्या है, ओम के ऐसे तो बहुत सारे अर्थ हैं। ओम शब्द दो शब्द से बना है, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है। कि तो इसमें टिकने के लिए क्या चाहिए, उस परम सत्य परमात्मा से निरंतर कंबाइंड स्थिति चाहिए। जब ऐसी स्थिति होगी तो मेरे अंदर ये ज्ञान का सागर मान, तब मुझे महसूस होगा कि बाबा कैसे, बाबा सदा ही सोल कॉन्शियस परम सत्य है, सदा ही सोल कॉन्शियस है और मुझे बाप के समान सोल कॉन्शियस रहना है। तो एनर्जी आत्मा के अंदर जो सर्व संबंध बाबा का साथ, निरंतर बाबा का साथ होगा ना, तो मुझे चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्थिति का भान रहेगा। और जब आत्मिक स्थिति का भान रहेगा फिर बाबा से एक संबंध की गहराई में जाना, कैसे बाबा मेरी मां कैसे है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार देते हैं, और ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही क्या देता है, बाबा मुझे दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, दो लिफ्ट, दो हमारी बर्थडे गिफ्ट हैं, जन्म से दे देता है। और हम दिव्य ब्राह्मण जन्मधारी ब्राह्मणों का क्या कर्म है, क्या ड्यूटी है, क्या फर्ज है। अब मैं ब्राह्मण, मुझे जन्म मिला, अब मेरा फर्ज है मैं दिव्य दृष्टि से देखूं, इन स्थूल नेत्र से ना देखूं। स्थूल नेत्र से देखें तो मुझे देहधारी दिखाई देंगे, कोई मेल कोई फीमेल, कोई बड़ा कोई छोटा दिखाई देगा, कोई सुंदर कोई काला कोई गोरा दिखाई देगा, कोई पैसे वाला कोई गरीब दिखाई देगा। किंतु अगर मैं दिव्य दृष्टि से देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, उस हरा मुझे अपना भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप महसूस होगा, परमधाम वाला, और आदि देवी देवता स्वरूप महसूस होगा, और सामने वाला का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम वाला स्वरूप महसूस होगा। और आदि में जब सत्व प्रधान था, जब भी वो आत्मा आई धरती पर, सत्ययुग में आई, त्रेता में आई, द्वापर में आई, कलयुग में आई, तो आदि में जब आई सत्व प्रधान थी तो उसका सत्व प्रधान स्वरूप महसूस होगा, या यूं कहें कि उसका परमधाम वाला ज्योति बिंदु स्वरूप महसूस होगा या फरिश्ता स्वरूप महसूस होगा। तो दिव्य दृष्टि से जितना दिव्य दृष्टि को यूज करते जाएंगे उतना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाएगी। दिव्य बुद्धि ऐसी वंडरफुल लिफ्ट है जो मुझे आत्मा को, मन सूक्ष्म शरीर है और दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, लाइफ का शरीर, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, बुद्धि यहां है और संस्कार बाहर दिखाई देते हैं। और जो बाबा ने हमारे चार नियम चार मर्यादाएं बना के दी हैं, पहला नियम क्या है, शुद्ध सात्विक भोजन। हम बाबा के बच्चों का भोजन बहुत शुद्ध शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, सात्विक में सात गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी अंकुरित दलिया रोटी सब्जी दही दूध, एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए, जो सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन हो। बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, पानी भी बाबा की याद में पियो, दूध भी बाबा की याद में पियो, क्योंकि 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। तो ये जो भोजन है ना, इससे हमारा क्या बनता है, मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। मैंने देखा जो हार्ट के हमारे पेशेंट्स आते हैं ना, हार्ट का जो प्रोग्राम चलता है, इसे कैट प्रोग्राम भी कहते हैं, उसमें डायबिटीज के पेशेंट्स भी होते हैं, उनका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनका भी होते हैं, फैटी लीवर वाले भी होते हैं, मोटापे वाले भी होते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां उनकी ठीक हो जाती, कैसे हो जाती हैं। तो वो जो है, ये जो ये जो हम करते हैं ना अभ्यास, सच्ची दिल पे हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और साफ दिल पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और भोजन पे बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम देखते थे कुछ कुछ ब्राह्मण को जो पेशेंट्स होते थे, वो पहले से नॉन वीक के होते हैं, जब यहाँ के कोर्स करते हैं उनको सारी बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं, शरीर के हर अंग के बारे में पढ़ाते हैं, अंग कैसे काम करते हैं, मन के बारे में पढ़ाते हैं, बुद्धि संस्कार के बारे में पढ़ाते हैं, फिर राजयोग, राजयोग क्या होता है, राजयोग कैसे, राजयोग का यूज करना है, प्रयोग करना है राजयोग को अपने अंगों पर, अपने शरीर की बीमारियों पर, अपने मन की बीमारियों पर कैसे उसको यूज करना है, उनसे मुक्ति पानी है उसको यूज करना है। तो हमने देखा कई लोगों का योग नहीं लगता है, और वो आके बताते हैं जब पहली बार मिलते हैं कि हमारा, हम घर में हमें ऑपरेशन नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं उनको आप अपने आप खुद खाना बना के खाओ, बाबा की याद में जो भोजन बताया ना उसको अपने आप बना के खाओ। तो जब वो अपने आप बना के खाना बनाने लगते हैं तो उनका योग लगना शुरू हो जाता है, पावरफुल योग, बहुत अच्छा योग लगना शुरू होता है, और पावरफुल योग लगना शुरू होता है तो उनके ब्लॉकेज खुलने शुरू हो जाते हैं, उनकी डायबिटीज ठीक होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक होने शुरू हो जाता है, लीवर ठीक होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन पहली चीज है, वैष्णव भोजन बहुत जरूरी है, उससे हमारा संग बदलता है। जब हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, उससे हमारा संग बदलता है। संग माना तब दिल करता है बाबा की मुरली पढ़ें, बाबा को याद करें, खाली बैठे तो बाबा को याद करें, ट्रैफिक कंट्रोल का समय ट्रैफिक कंट्रोल करें, है ना, दिल करती है बाबा, और बाबा और खाली उसे तो बाबा की मुरली निकाल के पढ़ें, बाबा की मुरली अपने आप याद आती है अगर अन्न शुद्ध खाया है तो। और रासिक भोजन खाया, पराठा पकौड़ा समोसा खाया, ये रासिक आलस्य पैदा करता है, अलबेलापन, तो बाबा की याद में नींद आएगी। और तामसिक भोजन खाया, लहसुन प्याज तो नॉन वेज तो जानते ही हैं सभी लोग, पर ये जो बहुत मसाले वाला भोजन, चटपटा भोजन, अचार, है ना, बहुत स्ट्रांग कॉफी चाय पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये जो है उत्तेजना पैदा करते हैं, बहुत कैफीन होती है, चाय होती है इसके अंदर, तो ऐसी चीजें, सिगरेट बीड़ी पीना, शराब पीना, इससे उत्तेजना पैदा करते हैं। तो ये भोजन क्या करते हैं हमारे, हम चाहते हैं बाबा की तरह बुद्धि पर, बुद्धि उत्तेजना में है, मन उत्तेजना चंचल हो गया है तो विकार पैदा होते हैं। हम चाहते हैं बाबा की तरफ जाए, बुद्धि जाएगी नहीं बाबा की तरफ, दुनिया की बातें याद आएंगी, बाबा की मुरली याद नहीं आएगी। तो अन्न का बड़ा महत्व है, तो अन्न से संग बनता है, मन में फिर संग बाबा का करने को दिल करता है, तब हमारा सत्संग माना बाबा और मुरली याद आती है। और जब बाबा और मुरली याद आती है, संग जिसे को सत्संग कहते हैं, और सत्संग से क्या होता है, फिर हमारे अंदर पवित्रता, तो निरंतर बाबा का संग रहने लगता है ना, तो दिल हमारे अंदर पवित्रता अपनी तरफ कशिश करती है, बाबा के जैसा बनने को दिल करता है। ब्रह्मचर्य तो हमारा बहुत इजी हो जाता है, किंतु मन में भी शुद्ध विचार आए, हमारी आंखों से पवित्रता दिखाई दे, मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न तक भी पवित्रता हो। बाबा ने एक मुरली में कहा ना, जब तक स्वप्न में पवित्रता नहीं है तब तक रूहानियत प्रत्यक्ष नहीं होती है। स्वप्न में भी शुद्ध हो, मेरी योग निद्रा हो, तमोवर्धन नींद ना हो, दासिक नींद ना हो, बाबा की याद में मैं, बाबा ही मेरे मुरली स्वप्न में दिखाई दे, बाबा के साथ हूं, यज्ञ में हूं, दादियों के साथ मैं हूं, मेरे दादियों के साथ रहने का बहुत मौका मिला मुझे, सभी दादियों की सेवा करने का मौका मिला एज ए डॉक्टर, तो मैंने देखा दादियों के साथ व्यवहार मिला ना, तो मेरे को सपन में जैसे दादियों के साथ ही हम व्यवहार कर रहे हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा से बात कर रहे हैं, सपन में भी ऐसा ही फील होना चाहिए, इसको योग निद्रा कहते हैं। तो ऐसी पवित्रता आ जाए, है ना, और जब ऐसी पवित्रता आती है तो पवित्रता सभी गुणों की खान है, सभी देवी गुणों की धारणा उसके बाद ही होती है। तो चार हमारे पिलर्स है ना, ये चार मर्यादाएं हमारे जीवन में जब आ जाती हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार पिलर हैं जिसपे पावरफुल मेडिटेशन होता है, अमृत वेला पावरफुल होता है, ये हमारा संस्कार बन जाए, हमें चाहे ना चाहे, हम जब ऐसे हमारी चार धारणाएं पक्की हो जाती है ना, चार मर्यादाएं, तो हमारी क्या होता है, हमारे अंदर हम अपने आप ही अमृत वेला, अपने आप ही टाइम पे 3:30 से पहले ही आंख खुल जाती है, 3:30 से पहले, गीत बजने से पहले ही पावरफुल, बस उठे और बाबा की याद में सूक्ष्म वतन में पहुंच गए बाबा के पास, और बाबा से अश्री बन के परम धाम घर में अश्री बाप से पास पहुंच गए, और मास्टर बीज रूप स्थिति में बैठ करके कलविश बीज रूप बाप से कंबाइंड होके सारे विश्व को सकाश दे रहे, ऐसी स्थिति बन जाए, पावरफुल अमृत वेला, और मुरली बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहे हैं, बाबा मुझे अपनी गोद में बैठा के इसे डोली सुनाता है ना, अपने बाबा अपनी गोद में बैठे सूक्ष्म वतन में बैठ के मुरली सुन रहे, कुल सुनाने वाला कोई भी हो, मैं बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहा हूं। और फिर सारा दिन मनन चिंतन बाबा की मुरली का अपने आप चलता है। और फिर सोने के पहले जब हमने पुरुषार्थ किया है, दिन में अटेंशन रखा है, रात को समाचार देने को दिल करता है बाबा, पोता मिल, मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया तो समाचार क्या देंगे हम। जब मैं पुरुषार्थ करता हूं, बाबा की मुरली का बेसिकली क्या है, राइट मेथड क्या है, ये जो बाबा की मुरली का एक 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 महावाक्य है ना, आज की मुरली में भगवान का ना एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। योग की विधि क्या है, एक एक वर्षन को बहुत अंदर से एक एक महावाक्य को रिवाइज करो, रियलाइज करो, ये बाबा ने कहा है। सच्ची दिल से जिस दिल में जो होता है ना, उसके एक एक बात याद आती। याद क्या चीज है, जो बाबा की याद आना, और बाबा ने जो कही भी बातें हैं उसको याद आना, वो याद। बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम, मैं आया हूं तुमको रूहानी हुनर सिखलाने, मनुष्य से देवता बनाने, तुम्हें इस देव और देखी दुनिया से परे शांति धाम में पहुंचाने के लिए, तुम्हें सत्युग में पहुंचाने के लिए। तो ये अंदर गूंजनी चाहिए बार बार बात, ये याद आना ही याद है, बाबा की याद आना और बाबा की कही बातें याद आना, बार बार याद आना और महसूस होना। हम 10 मिनट में स्कोर क्लियर करके फिर हम 20 मिनट योग करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, सच्ची दिल साफ दिल जब होगी तो ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, बाबा के साथ का अनुभव होगा और ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, उसको महसूस करें। पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, वो प्रैक्टिकल में फील होगा। और शांति का अर्थ क्या होगा, पास की जितना पवित्रता आती जाएगी शांति हमारे अंदर आती जाएगी। शांति माना पास को फुल स्टॉप लगता जाएगा और वर्तमान में अपने सत्य में स्थित होकर परमात्मा पिता से कंबाइंड होकर काम करेंगे, वो प्रैक्टिकल में हमारे व्यवहार में आता जाएगा। और प्रेम माना हमारे आसपास जो भी घर में या बाहर कार्यस्थान पर या सेंटर में जो भी भाई बहने रहते हैं उनको सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका संस्कार अलग अलग है, उन सबको हम दिल से स्वीकार करेंगे, उनकी बराबर पालना करेंगे। जो हमारी गिलानी करता है और जो हमारी महिमा करता है दोनों को बराबर हम इक्वल लेंगे, इसी को प्यार कहते हैं। इसी परमात्मा को प्यार का सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई आत्मा कैसी भी हो बाबा सबको दिल से सम्मान से स्वीकार भी करता है और सबकी बराबर पालना करता है, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो, क्योंकि जो जैसा बीज बोता है उसका फल उसको मिलता है। बाबा इसको नहीं देखता पर बाबा सबकी बराबर पालना, हमें भी ऐसा ही करना है, इसे कहते प्यार। तो प्यार, ऐसा प्यार को विश्व के सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना होगी। जब ऐसा प्यार विश्व के हर आत्मा के प्रति होगा तो तब हम बाबा की गोद का अनुभव करेंगे, इसको हम अतिंद्रिय सुख कहते हैं। पाना से सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति का महसूस करेंगे, संतुष्टता, स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे, बाप भी संतुष्ट रहेगा, ड्रामा से भी संतुष्ट रहेंगे और ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट रहेंगे और लौकिक परिवार से भी संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसी जब संतुष्टता अंदर आएगी तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति बनती जाएगी और उससे आनंद की स्थिति माना सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, लवलीन स्थिति, जो कल बाबा ने कहा स्नेह के सागर में समा गए, लवलीन हो गए बच्चे, जैसे कल बाबा कितने प्यार से सकाश दे रहा सब बच्चों को है ना मुरली सुनाते हुए, तो हमारी आनंद की स्थिति लवलीन स्थिति महसूस होगी। और जब ऐसी अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है ना तब हमारी तीसरी आंख खुलती है, तब हमारे सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है, जिसे थर्ड आई विजडम कहते हैं, तब विवेक जागृत होता है। किंतु याद रहे ये गुह्यता क्या है, कर्म पुरुषार्थ की गति गुह्य क्या है, अगर दिल में जो भी सत्य है, कोई भी देवहारी के प्रति लगाव है, कोई वस्तु के प्रति झुकाव है, थोड़ा भी किसी से टकराव है तो मेरी दिल सच्ची नहीं है, कोई देहधारी दिल में है, कोई वस्तु दिल में है तो दिल सच्ची नहीं है, तो क्या होगा, ना तो मुझे पवित्रता अंदर महसूस होगी, ना शांति आएगी, ना सबके प्रति प्रेम आएगा, कोई अच्छा लगेगा कोई बुरा लगेगा, और बाबा के साथ का अनुभव नहीं होगा, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तीसरी आंख क्या होगी, तीसरी आंख खुलेगी नहीं, सत्य को प्रकट शक्ति जागृत नहीं होगी, अर्थात विवेक जागृत नहीं होगा, थर्ड आई ऑफ विजडम खुलेगी नहीं, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव नहीं होगी, तब जाके यथार्थ निर्णय करने की शक्ति पैदा होती है, जब हम सत्य को प्रश्न शक्ति जाए, सत्य की प्रश्न शक्ति क्या है, यही है यही है यही है, एक परम सत्य परमात्मा, यही मेरा है, यही मेरा सब संबंधी है, एक बल एक भरोसा, यह है ब्राह्मणों के सत्य को प्रश्न शक्ति। किसी भी देहधारी की तरह जरा भी आकर्षण ना जाए, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, जब ये परख लेते हैं ना, जब हम इसको कहते तीसरी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुलती है तो यथार्थ निर्णय करने की शक्ति पैदा होती है, तब यथार्थ निर्णय क्या, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, यह निर्णय करने की शक्ति, मुझे शुद्ध सात्विक भोजन खाना ही है, अगर कुछ भी खाने को नहीं मैं फल खा के रह लूंगा, सिर्फ तीन केले और एक कप दूध पी के रह जाऊंगा, मुझे खाना मुझे और कोई टच भी नहीं करना, भोजन कहीं भी कुछ भी मिले मुझे टच ही नहीं करना, मुझे बस बाबा की याद में थोड़ा सा भोजन करके काफी है, शुद्ध सात्विक भोजन सत्संग, बस बाबा और मुरली का संग करना, मुझे ना टीवी चाहिए ना मोबाइल चाहिए। आज सबसे बड़ी ब्राह्मणों की प्रॉब्लम क्या है, टीवी और मोबाइल, ये मोबाइल सबसे बड़ी खतरनाक चीज है जो बाबा के बच्चों को दूर लेके जा रहा है बाबा से, घंटों घंटों बाबा के बच्चे भी यूट्यूब देखने शुरू करेंगे, हमारी क्या टेंडेंसी क्या होती है, सुनेंगे मुरली फिर साथ में दूसरी दूसरी चीजें भी आती हैं, दूसरी चीज में लग जाएंगे, मुरली सुनेंगे 15 मिनट उसमें आ जाएगा आधा घंटा, जिससे हमारे अंदर क्या होता है, बाबा कहते हैं हियर नो यूविल, सी नो यूविल, टॉक नो यूविल, थिंक नो यूविल, डू नो यूविल, ईट नो यूविल, फिर बुद्धि बाहर जाती है, तो दिल सच्ची साफ नहीं रहती है। तो दिल सच्ची साफ करने के लिए बहुत जरूरी है, जरा भी मन और साफ माना जरा भी मनमत परमत ना हो, मैंने 300 ml दूध लिया उसमें 1 ml जहर मिला दिया तो क्या बन गया, वो सारा जहर बन गया ना, ताकत तो नहीं मिलेगी। मैंने मुरली के साथ साथ थोड़ी एक बात दुनियावी बात सुन ली, या मैंने कोई कुछ कोई कही आपको कुछ बात कही कि क्लास में 99 बातें मैंने अच्छी कही, क्योंकि तो एक बात मैंने मनमत परमत सुनाई आपको, आप वो मनमत परमत वाली बात पकड़ लेंगे, वो 99 बातें आपकी बुद्धि से निकल जाएंगी, क्योंकि मन्मथ पर्वत अंदर भरी हुई है, वो बात पकड़ी जाएगी। तो बिल्कुल शुद्ध बाबा की मुरली जो है ना, मैं तो ये समझता हूं कि बाबा और बाबा की मुरली, यही जिसके अंदर है, जिसके दिल में, उसकी विवेक जागृत है, वो बाबा की इंपॉर्टेंस समझता है और उसकी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, लाइट का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और ये संस्कार, ये मर्यादा, चार नियम चार मर्यादाएं, ये हमारी चमकीली ड्रेस बन जाती है। और इस सूक्ष्म, ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। इसको बोलते हैं विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। देह और देह की दुनिया के विस्तार से ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है सूक्ष्म शरीर के साथ। और फिर बाबा के साथ हम बाप के संबंध का अनुभव करते हैं, ज्ञान सागर, पवित्रता का, जो बाबा ने कहा बाप के रूप में वर्षा। वर्षा क्या है? ज्ञान का वर्षा, पवित्रता का वर्षा, शांति का वर्षा, सत्य प्रेम का वर्षा, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा, आनंद का वर्षा, आठों शक्तियों का वर्षा। ये प्रैक्टिकल उसके सागर में हम समा जाते हैं बाबा के साथ। विजुलाइज नहीं करते, रियलाइज सचमुच में महसूस होता है कि हाँ बाबा, ज्ञान सागर क्या होता है। जैसे गुलाब जामुन को हम विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो वो ज्ञान सागर की गोद में आपने बनाया ना, आप वहां पहुंच गए हैं, तो आप सचमुच में बाबा के साथ वो ज्ञान का महसूस करते हैं, मैं आत्मा हूं, कैसे बाबा के साथ, बाबा के गोद में हूं, है ना, परम सत्य बाबा जो सदाई सोल कॉन्शियस है, कैसे मैं उसके साथ हूं, कैसे बाबा अशरीरी बाबा है, विदेही बाबा है, उसके साथ मैं कैसे हूं, कैसे उसकी गोद में हूं, अपने अपने मन के साथ, सूक्ष्म रूपी, सूक्ष्म शरीर रूपी मन के साथ, अपने संस्कारों के साथ बाबा की गोद में हूं, है ना। ड्रामा को कैसे बाबा फुल स्टॉप लगाता है, मैं भी कैसे फुल स्टॉप लगाता हूं। पवित्रता, शांति, शांति के सागर में हूं, कैसे शांति, माना कोई संकल्प नहीं चल रहा है, प्रेम माना कोई कैसा भी है उसका संकल्प नहीं चलता है, सबको सबको हम एक्सेप्ट कर सकते, प्रति शुभ भावना शुभकामना। अतीन्द्रिय सुख, बाबा के साथ मैं मिल रहा हूं, सब सम बाबा मुझे देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है। और आनंद, लवली स्थिति, वो प्रैक्टिकल महसूस होती है। सत्य को प्रकटने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, और विस्तार, बाबा की गोद की अनुभूति। फिर अशरीरी बन के परम धाम कर, अशरीरी बाप से कंबाइन होने की शक्ति, बैटरी चार्ज होने लगती है, अंदर से परिवर्तन हो जाता है। बैटरी चार्ज होने से हमारे शरीर रूपी, शरीर में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो हमें, जो भी शरीर की बीमारी होती है, मन के अंदर परेशानी होती है, वो हमें सहन हो जाती है, ऐसे केमिकल लेकर सहन, पेन खत्म हो जाती है, दर्द खत्म, दुख खत्म हो जाता है। सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, इससे हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। अशक्तियां होने से सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, अंदर हीलिंग एनर्जी पैदा हो जाती है, जो भी मन और तन की बीमारी खत्म होने लगती है, समस्याएं, विघ्न खत्म होने लगते हैं अपने आप ही। हम विघ्न बहुत महसूस होते हैं कई बार, तो ब्राह्मणों के विघ्न अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। हमें लगता है हम कोई इसमें घर्षण करने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद जाके माफी मांग लेते हैं, जो अपनी गलती महसूस होती है उसको माफी मांग लेते हैं, जहां भी कुछ गलत होता है हम उससे महसूस करके रियलाइज कर लेते हैं। जब हम रियलाइज करते हैं ना, तो हमें रास्ते में दिखाई देता है, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं हैं, अर्थात रास्ते में कौन सी कमी कमजोरी है मेरे लक्ष्य में वहां तक पहुंचने में, तो वो लक्ष्य दिखाई देता है कमी कमजोरी, उसको हम रियलाइज, कमी कमजोरी को रियलाइज करते हैं, तो उससे हमारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सही विधि जो है वो रिवाइज और रियलाइजेशन करना है। हम बाबा को सचमुच महसूस करें दिल से, तो बाबा के साथ एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएगी, और जब अनुभव की अथॉरिटी में बन करके उसको लगातार, उससे हम प्राप्तियां महसूस करते रहेंगे, तो एक दिन हमारी तृप्ति हो जाएगी, और तब जाके हम बाबा सदा हमारे साथ रहेगा, हर समय साथ रहेगा, तो क्या होगा, मेरी चित्त, दिल, एक दिल है, एक विवेक है, दिल सत्य है तो विवेक जागृत है, और निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है। इसको बोलते सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि। जब मेरी दिल सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि हो जाती है, तो मेरा चिंतन मन में, चेतन मन में चिंतन, तब मुरली का चलता है, तब सारा दिन मुरली ऑटोमेटिक अंदर बजती रहती है, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने आज ये कहा था, जैसी समस्या आती बाबा की बात याद आती है, बाबा ने उस मुरली में ये कहा था, खाली आज की मुरली नहीं, कल बाबा ने ये कहा था ना, वो तुरंत वो पॉइंट यूज करते हैं, बाबा ने ये कहा था, पॉइंट नहीं, पॉइंट स्वरूप बनकर के उस पॉइंट को यूज करते हैं, तो हमारी समस्या खत्म हो जाती है, हमारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं, और हम स्थिति हमारी आगे बढ़ती जाती है। तो चिंतन हमारा बाबा की मुरली का चलता है, चिंतन चलने से हम बाबा के संकल्प से भावना माना, हम इस बात जब से बार बार उसको गहराई से जब महसूस करते हैं बाबा की मुरली के पॉइंट का, तो हमें हमारी भावना की वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचते हैं, और बाबा हमारे को हजार गुना याद करता है, तो उसके वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचते हैं, इसी को कैचिंग पावर टीचिंग पावर कहते हैं। क्योंकि बाबा छत्र छाया हमारे साथ हमेशा रहता है, छत्र छाया के रूप में मैं कुछ सोचता हूं, बाबा उसको हजार गुना करके मुझे शक्ति देता है, और फिर उसी भावना में रहते हैं तो वो वृत्ति बन जाती है, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल बन जाता है। उस रूहानी वायुमंडल में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां प्रैक्टिकली हमारे वायुमंडल में दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं। जो भी वायुमंडल में आता है उसको महसूस होती है। जैसे मधुबन में आते हैं हम, शांतिवन में आते हैं तो फील होता है, शांति महसूस होती है, सच्चा प्रेम महसूस होता है। कोई बोलता नहीं है तो भी उनके अंदर प्रेम का वायुमंडल फील होता है, सुख का वायुमंडल, आनंद का वायुमंडल फील होता है, सहन शक्ति अपने आप आ जाती है। तो ये प्रैक्टिकल हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे अंदर जो फील होता है ना वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसी को कहते हैं स्मृति। हमारे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं और उसको हमारे चेहरे और चलन दिखाई देते हैं, उससे हमारा व्यवहार बदलता है। प्रैक्टिकल हमारे व्यवहार में मिठास आती है, मधुरता आती है, सरलता आती है, नम्रता आती है, हम सबको रिगार्ड देते हैं, निमित्त भाव निर्माण भाव आता है, निर्मल वाणी हो जाती है, आज्ञाकारी वफादार हो जाते हैं, ईमानदारी आती है, बाबा से भी ईमानदारी आती है, फरमान बढ़ता है, बाबा ने जो कहा मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है बाबा ने जो कहा, इससे हमारे अंदर सर्वगुण संपन्न बनते जाते हैं और फिर हमारा व्यवहार बदलता जाता है। वो गुण जो है हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। आहार हमारा खाली मुख का आहार नहीं, आंखों का आहार भी बदल जाता है, हमारा देखना, हमारा पढ़ना, हमारा सुनना, हमारा श्वास लेना, सब कुछ बदल जाता है, संग भी बदल जाता है। तो हमारा व्यवहार बदला, आहार बदला और हमारा विहार भी बदल जाता है, हमारी नींद, हमारा सैर, हम हर चीज हमारी बदल, जैसे ब्रह्मा बाबा की तरह ऐसी बदल जाती है। तब हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, तब हम माया जीत बन जाते हैं, तब प्रकृति यथा शरीर रूपी प्रकृति हमारे वश में आ जाती है, हमारी कर्मेंद्रिय आंख नाक कान हमारे कंट्रोल में आ जाती है, और तब हम विक्रमाजीत बनते हैं, तब हमसे विक्रम होने बंद होते हैं और तब हम कर्मातीत बनते हैं, तब हमारी स्थिति लाइट हाउस माइट हाउस बनती है। और ऐसी स्थिति में बन के हम फिर निरंतर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बीजरूप स्थिति में स्थित होकर के मास्टर बीजरूप बन के कलवृषि जड़ में बाबा से कंबाइंड होके हर समय सारे कलवृक्ष की सभी आत्माओं को, सत्युग की, त्रेता, द्वापर कलयुग की आत्माओं को सकाश अपने आप पहुंचता रहता है। तो ये जो इस समय हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमेशा ऐसी स्थिति बन जाए लाइट हाउस माइट हाउस की, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत, लाइट हाउस माइट हाउस बन के, मास्टर बीज रूप बन के, क्लब ऋषि जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड होके हम सारा समय बीच बीच में जैसे टाइम मिले, मैं तो जैसे मैं देखता हूं अपने आप को, पेशेंट देखते देखते भी एक पेशेंट देखा बीच में 30 सेकंड मिले, 30 सेकंड अभ्यास में चला गया, फिर एक पेशेंट देखा फिर 30 सेकंड के लिए चला गया। तो बीच बीच में जहां भी कार में बैठ के हॉस्पिटल जा रहा हूं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बीच बीच में भी खाना खाते खाते भी, बीच में पानी पीने में बैठ अभ्यास करते हैं, पानी पीते पीते भी बहुत प्यार से बाबा की याद में सकाश देते हुए पानी पीना, हर समय ये अभ्यास करना, ऐसी स्थिति हमारी बने तब हम, ये हमारा भी पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि हम आधार मुहूर्त है, उद्धार मुहूर्त है और उदाहरण मुहूर्त, हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, तब जाकर के साइंस तान जो एटॉमिक बटन या जो विनाश करने वाली आत्माएं उनका बटन दबा पाएंगे और तब प्रकृति के, जब उसके बाद प्रकृति अपना काम करेगी। तो इस समय हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, अचल अडोल एक स्थिति बनाने का, जिससे कि बाबा के हम कार्य को संपन्न और संपूर्ण जो महापरिवर्तन होने वाला है उसमें हम अपना पार्ट निभाएंगे, अपनी फर्ज निभाएंगे बाप समान बन करके, तो फिर हम बाप के साथ वापस घर जाएंगे और सत्युग में बाबा के साथ वापस इस दुनिया में, सत्युग में नई दुनिया में आएंगे। ओम शांति। चलिए हम 15 मिनट अभी बाबा की याद में बैठेंगे, पावरफुल याद में से बैठे, अलर्ट होके सीधे होके बैठ जाओ, सभी एक्टिव होके 15 मिनट ऐसे याद करो बाबा के साथ। पहले अशरीरी बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं और फिर वहां से सूक्ष्म वतन में आएंगे।
खुशियों का सब संसार मिलता है।
में पंछी बने उड़ता सितारा।